वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भये अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं गितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल गए सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज, हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए रोज एक साथ मिल बैठकर विचार करते हैं। धर्म कार्य के लिए एक साथ इकट्ठे होना आज के काल में दुर्लभ ही है, और दूसरे पाप कार्यों के लिए तो हम बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं, पर ये हमारा पुण्य का उदय है कि हम धर्म कार्य के लिए भी और एक साथ इकट्ठे होकर और अपने जीवन के कल्याण के लिए विचार कर पाते हैं। पिछले दिनों हमने इस बात पे विचार किया था कि हम रोज कोई ना कोई कार्य करते हैं, निरंतर हम कर्म की प्रक्रिया को करते चले जा रहे हैं, निरंतर हमें कर्म बनते जा रहे हैं, और जो कर्म हमने बांधे हैं उनका फल भी हमें भोगना पड़ता है। क्या कोई उपाय है कि हम अपने उन बांधे गए कर्मों का फल आसानी से भोग कर उन्हें नष्ट कर देवें और आगे कर्मों का बंधन ना हो? तो हमने ये समझा है कि ऐसा नहीं है कि जो कर्म हमने बांधे हैं उनका ज्यों का त्यों फल हमें भोगना ही पड़ेगा। 5% कर्म ऐसे हैं जिनका कि फल हमें नियम से भोगना पड़ता है, वे हमारी अपनी अज्ञानता से बांधे गए निकाचित कर्म हैं। पर सारे कर्म ऐसे ही हों ऐसा नहीं है, अन्य कर्मों पर हमारा वश है, हम उनके स्थिति और अनुभाग को कमती बढ़ती कर सकते हैं, हम उनके स्वभाव को बदल सकते हैं, उनकी प्रकृति को बदल करके उन्हें संक्रमित कर सकते हैं, हम उन कर्मों का क्षय भी कर सकते हैं, हम उन कर्मों का उदय आने पर अपने परिणामों को संभाल कर द्रव्य क्षेत्र काल के अनुरूप उनका फल आसानी से ले करके उन्हें नष्ट भी कर सकते हैं। हमें अपना पुरुषार्थ जागृत करना चाहिए। कर्म का उदय है ऐसा कह के बैठ जाना यह तो बुद्धिमानी नहीं होगी। ये बात अलग है कि कर्म जो हमने बांधे हैं वे जब उदय में आते हैं तो हम थोड़ी परवशता का अनुभव करते हैं, पर ऐसा नहीं है, आत्मा इतनी परवश नहीं है कि वो कर्मों के वशीभूत जैसी अनादिकाल से अपनी अज्ञानता की वजह से बनी हुई है वैसी अनादिकाल अनंत काल तक और बनी रहे। नहीं भैया, को समय ने कर्म ने आत्मा दावेश है, पर को समय ने तो आत्मा कर्म ने दावेश है। कभी कभी जब जीव अज्ञानता रूप परनमन करता है तब कर्मों के वशीभूत होकर संसार में भ्रमण करता है, लेकिन यदि वही जीव अपने परिणाम संभाल लेवे, जागृत हो जावे, तो उन कर्मों पर भी विजय प्राप्त करके और अपने आत्मा के स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। ये मोटी सी बात अपने ध्यान में रहनी चाहिए। कर्मन की गति टारी न टरे, ये जो लिखा गया है वो अपने बांधे गए निकाचित कर्मों की अपेक्षा से लिखा गया है कि भैया ऐसे भीषण कर्म न बांध लेना कि उनका फल भोगने में भी और हम मजबूर हो जावे। कर्म का बंध करते समय सावधानी रखी जावे। कर्म के बंध के समय क्या सावधानी रखेंगे, पता तो लगता नहीं है कि कौन से कर्म कब बंध जाते हैं। तो फिर कहते कि कर्म के उदय के समय सावधानी रखी जावे, उस पे तो हमारा वश है। कर्म के उदय आने पर हम असावधान हो जाते हैं, क्रोध का उदय आया हम असावधान हो गए, निमित्त पर टूट पड़ते हैं कि अरे इसकी वजह से मेरा ऐसा बिगाड़ हुआ या कि इसकी वजह से मेरा भला हुआ, ऐसा पर वस्तु को लेके और भले बुरे का भ्रम पैदा कर लेते हैं और अपने उन कर्मों के उदय में मजबूर होकर के नए कर्म बांध लेते हैं। यदि हम उस समय सावधान रहें और अपने परिणाम संभाल लेवें तो कोई वजह नहीं है कि वे कर्म हमें अपना ज्यों का त्यों फल दें ही। अंजना के बारे में ये विचार मैं बैठे बैठे कर रहा था, महाराज कहानी सुना रहे थे, कहानी भी सुन रहा था, कहानी से प्रभावित भी हो रहा था, पर साथ में ये विचार भी चल रहा था कि अरे देखो अज्ञानतावश उन्होंने कर्म बांधा था, लेकिन कैसे शांति से उन्होंने 22 वर्ष तक उसको भोग लिया। हमें ये बात तो बहुत मुश्किल में डाल देती है कि अंजना को ऐसे कर्म अंजना ने बांध लिए थे, उनका फल भोगना पड़ा, पर उसके साथ ये बात भी तो ध्यान में आनी चाहिए कि उन्होंने कैसे भोगा। वे महापुरुष क्यों कहलाने लगी, इसलिए कहलाने लगी कि भैया उन्होंने, अज्ञानी तो सब जीव है वे कर्म बांध लेते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वो कर्मों का फल भोगते समय सावधान रहता है। बस यही अंजना की पीठ थपथपाने लायक बात है कि 22 वर्ष कैसे काटे, यहां तो एक क्षण भी जो है अगर हमारे ऊपर विपत्ति आ जाती है तो जीना मुश्किल हो जाता है। जिनको की विवाह के बाद देखना भी पसंद नहीं किया और परित्याग कर दिया, घोषणा पूर्वक परित्याग कर दिया कि मैंने त्याग कर दिया, ऐसी स्थिति में भी इतना पॉजिटिव किसी का सोच हो सकता है क्या, जो कि 22 वर्ष के बाद पहली बार दर्शन करने पर जिसको कहे कि दुरीक्षणे हट जा, तुम्हारा देखना भी मेरे लिए अशुभ है, ऐसा कह के और चला जाए, और उसके बाद भी अंजना ये विचार करे कि कम से कम कुछ कहा तो, इतना तो बोल के गए। इतना पॉजिटिव अप्रोच, इससे हमें और आपको क्या शिक्षा ले लेनी चाहिए। यहां तो अगर हमारा कोई व्यक्ति जरा सी बात हमसे कह देता है तो हम सारा संसार सिर पे उठा लेते हैं, संसार सिर पे नहीं उठाते, अपना संसार बढ़ा लेते हैं और कुछ नहीं। लगता है कि मैंने संसार सिर पे उठा लिया, मैं सबको ठीक कर दूंगा। अरे भैया, अपने को बिगाड़ के दुनिया को क्या ठीक कर पाओगे? अपना बिगाड़ तो आपने पहले कर लिया, ऐसा विचार करते ही साथ कर्म सिद्धांत ऐसे समझना चाहिए। कर्म तुरंत भी फल देता है और बाद को फल तो देता ही है। ऐसे धोखे में नहीं रहना कि आज बांध लो कछु हर जा नहीं आ, बांधा चले जाओ, जब देखें जवान लगे उदय में सो। अबे कछु डरे भी की बात नहीं है, ऐसा भी नहीं। और ऐसा भी नहीं सोचना कि हमने बांधी है सो में भोगने पड़े, नहीं ऐसा कोई मजबूरी नहीं है। हम बार बार इसी बात पे विचार कर रहे हैं क्योंकि सामान्य जन तो यही सोचते हैं कि अपने बांधे कर्म है भैया, हमें भोगने पड़े हैं देखो। लेकिन कैसे भोगेंगे ये भी तो सीखो प्रथमानी योग से, कि कैसे महापुरुषों ने भोगे। बांधे थे उनने सो उनको भोगने पड़े, लेकिन भोगे कैसे उनने? रो रो के नहीं भोगे, बस इतना ही। उन्होंने जो है शांति से और समता परिणाम से भोगे हैं उन कर्मों को, इसलिए उन्होंने कर्म काटने का उपाय किया है। वर्तमान में भी कर्म हमें फल देता है और आगे भी देता है, ये बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जितो हम जी रहे हैं वो सब पुराने हिसाब से ही जी रहे हैं, वर्तमान को जो हम कर रहे हैं वो आगे मिले। वर्तमान को वर्तमान में भी मिलत है और आगे भी मिलत है, और पहले वालों भी वर्तमान में मिलत है, ये भी ध्यान रखना। आप रास्ते से चले जा रहे हैं, बॉटल आपके पास में है पानी की, पानी रखा हुआ है, और बहुत भीषण धूप में आप चले जा रहे हैं और सामने से एक आदमी आता दिखाई पड़ता है, बहुत प्यास से पीड़ित है और आपसे कहे कि भैया थोड़ा पानी दे दो। अगर आपके भले संस्कार हैं तो आपके मन में क्या आएगा कि दे दो भाई इसको पानी, दे उसको पानी, आपने पिला दिया। अब जो जो पानी पिलाने का कर्म है, जो बाद में फल देगा कि तुरत ही फल देगा? तुरत ही फल देगा, आपको आत्मसंतोष मिलेगा, उसकी प्यास बुझ जाएगी आपके पानी पिलाने के कर्म से। विचार करो, तुरंत फल मिला कि नहीं मिला कि बाद में मिलेगा? बाद में भी मिलेगा, पर तुरंत तो मिला है कि उसकी प्यास बुझ गई पानी पिलाने से और हमें संतोष हो गया। और इतना ही नहीं, हमारे भीतर एक भला संस्कार बैठ गया, हमारा भला संस्कार मजबूत हो गया कि पानी पिलाने से बड़ा संतोष मिलता है, दूसरे की प्यास बुझती है, ऐसा संस्कार प्रबल हो गया। और इतना ही नहीं, महीना भर बाद अगर रास्ता में वो आदमी मिल जाएगा तो कहेगा भैया जय जिनेन्द्र, अपन भूल गए। कहा भाई हो कौन आप? अरे कह ले आप भूल गए, हमें तो याद है महीने भर पहले आपने जो है हमें बहुत प्यास लगी थी तब पानी पिलाया था। बताओ भैया, महीने भर पुराना किया हुआ कर्म महीने भर बाद भी फल दे रहा कि नहीं दे रहा? और उस समय भी दे रहा था, बात तक भी बस इतने ही सीधा हिसाब है। जो कर्म हम करते हैं उनका तुरंत भी फल मिलता है। अरे भाई, किसी से भी बुरे शब्द बोलो, तुरंत फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर आपसे ज्यादा बलवान होगा तो तमाचा मारेगा वो आप, और नहीं तो गांठ तो बांध ही लेगा कि मौका मिलने पर हिसाब चुकाएंगे है? और अगर किसी से प्रेम से बोलो तो आपके चरणों में झुक जाएगा वो, और बाद में भी चार लोगों के बीच बैठेगा तो कहेगा कि भैया हम उनसे मिले थे, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, जो कुछ भी बात करो बड़ी प्रेम से बात करते हैं। ये क्या चीज है? ये कर्म अपना फल तुरंत भी देता है, बाद को भी देता है। ये चीज अपने मन में ध्यान में रखना चाहिए। अपन कर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर रहे हैं इसलिए कि हम रोज कर्म बांधते हैं, तो कैसे बांधें, उदय में आ जावे तो क्या करें, बस इतना ही सीखना है। उदय में आने पर मेरे लिए समता परिणाम में रह पावे तो द्रव्य क्षेत्र और काल के अनुरूप जैसा बने वैसा थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लेवे ताकि वे कर्मों का जो बोझ है और न हो सके भैया तो कर्मों का बहुत उदय आने पर शांत रहना चाहिए, ज्यादा हाथ पांव नहीं चलाना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति नदी में गिर पड़े वो तैरना नहीं आता होवे तो क्या करे, हाथ पांव नहीं चलाए, शांति से पड़ा रहे, बहाव के साथ बहता चला जाए, लेकिन आंख खुली रखे कि जैसे ही कहूं पकड़वे की चीज मिल जाए सो लपक के पकड़ लेंगे। अबे अपनी ऊर्जा खत्म करने से कोई मतलब नहीं, थोड़ी देर हाथ पैर चलाएंगे, बहाव बहुत तेज है, आखिरी में डूब जाएंगे। तो अभी अभी अपनी ऊर्जा खत्म न करो, कर्म के तीव्र प्रवाह में शांत रह करके उस प्रवाह को निकल जाने दो। थोड़ी देर के बाद भैया कोई भी कर्म है अंतर मुहूर्त तक बहुत तेजी से उदीर्णा होती, उसके बाद अपने आप शांत हो जाती। ज्यादा चले तो 6 महीना से ज्यादा नहीं चलता साता असाता का उदय, लेकिन उस साता असाता के उदय में हम और अधिक जो है संक्लेश करके और उसका जो इंटेंसिटी है उसकी जो प्रबलता है उसको और बढ़ा देते। साता के उदय में गाफिल हो करके और असाता के उदय में संक्लेश करके, दो ही बातें। साता के उदय को भोगते हैं अहंकार पूर्वक और असाता के उदय को भोगते हैं संक्लेश पूर्वक, बस यही हमारी चूक हो जाती और कुछ नहीं। दो ही उदय आते हैं जीव को, साता का भी और असाता का भी। तो कल अपन ने ये सब बातें समझी थी और ऐसा है कर्म सिद्धांत समझने के लिए ज्यादा अगर समझ में नहीं आए तो भैया जितनी घड़ी हो सके धर्म ध्यान में बीते सुबह सार्थक हैं। बचपन में जब धोबी कपड़ा लेके आता था तो सीधे कपड़ा घर नहीं रखे जाते धोबी से लेके, अब की बात अलग है, पुराने जमाने की चर्चा कर रहे हैं। सो बाहर डिपकरिया पे धरवा लेते, धर दो इतना ही धर दो, अब फिर के बाद ले आओ भैया एक लोटा पानी ले आओ। सो पानी ले आए, सुनने इतने तो थप्पी लगी, एक एक धोती की 16-16 तो घड़ी है और वे इतनी घड़ियों पे तन्ना कैसो किंचा दो, कहने धर लो उठा के भीतर हो गए शुद्ध। अब एक घड़ी तो भींगी नहीं है वो की और शुद्ध हो गए भी, 16 घड़ी में से एक परत नहीं भीगी और सब शुद्ध हो गए। हाँ धर लो घर है धर लो। ये क्या चीज है, ये बहुत बड़ा संदेश है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधे मैं हूं आग, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। बा घड़ी तो कपड़ों की भई हो शुद्ध चाहे न भई हो, जीवन की अगर एक घड़ी नहीं आधी घड़ी, आधे में हूं आज और तुलसी संगति साधु की, अगर हमारे परिणाम अगर अच्छे हो गए आधी में से भी आधी घड़ी खो तो हमारा पूरा जीवन, पूरी 16 घड़ी नहीं, पूरी जितनी घड़ी होते हैं, कितनी घड़ी होती, 30 घड़ी होती एक 24 घंटे में, के ज्यादा 60 घड़ी होती 24 मिनट की, वे सब सार्थक हो गई। आधी घड़ी, आधी में से भी आधी हमारे परिणाम अच्छे हो गए अगर, तो सारी सारी घड़ियां, जैसे कि एक परत पर पानी का किंचा पड़ गया सो पूरी पूरी धोती शुद्ध हो गई। ऐसे जो है हमारे थोड़े देर के लिए परिणाम अच्छे हुए तो संभव है कि हमारा पूरा जीवन ही सुधर जावे। ये कर्म सिद्धांत हमें इसलिए हम समझ रहे हैं कि जैसे बने तैसे अपने जीवन की जितनी घड़ियां होवे सो भैया वे पवित्र कर लेना चाहिए। मेरा पूरा जीवन ही ऐसा ना बीत जावे कि जिसमें सिवाय पाप के और मैंने कुछ नहीं कमाया, थोड़ा बहुत धर्म ध्यान भी हमारे जीवन में आए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अपन समझ रहे थे कि कैसे कैसे हमने कर्म बांधे हैं और कैसे हम आगे चाहें तो उनको काट भी सकते और नए बांध सकते हैं। सो अपन ने समझा था कि अपना ज्ञान अगर बढ़ाना है तो दूसरे के ज्ञान की प्रशंसा करो, दूसरे के ज्ञान को बुरा नहीं कहो, और कोई अगर 2 अक्षर भी देवे अपन को ज्ञान के स्वरूप तो उसका धन्यवाद मानो, उसका हमेशा गुणगान करो कि भैया हमने तो उनसे सीखा है, हमने तो उस किताब से पढ़ के सीखा है, हम कहां, हम तो अज्ञानी थे, हमने तो ज्ञान गुरुजनों की कृपा से प्राप्त किया है, तो हमारा ज्ञान और दर्शन बढ़ेगा। हमने कल साता वेदनी कैसे हम बांधते हैं, बांध सकते हैं, इस पे समझा था कि भूत प्रत्यनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति सौचमिति सद्वेद्यस्य, उसमें मुख्य बात जो समझी थी कि जितना हम निर्लोभ होते चले जाएंगे उतनी साता बनती चली जाएगी, और जितने हम लोभी होते चले जाते उतनी असाता बांध लेते हैं, मोटा हिसाब। और 24 घंटे विचार करें कि कितनी देर निर्लोभ हुए हैं, जे जो द्रव्य चढ़ाने के मौके मिलते हैं, पूजा करने के भी अपने निर्लोभ होने के मौके हैं कि बहुत अच्छी तो लग रही, लेकिन चढ़ाओ भगवान के सामने, विसर्जन करो, त्याग करो, त्याग के जितने मौके हैं वे सब निर्लोभ होने के मौके। मुनि महाराज को आहार दे रहे हैं, लोभ जागृत हो सकता है चीज के प्रति के जा तो हम अपने उपयोग में लेते, लेकिन नहीं, दे दो। ये जो दे दो का भाव है वो निर्लोभ का भाव है, और वो साता वेदनी का बंद करता है। क्या 24 घंटे में हम ऐसा साता वेदनी नहीं बांध सकते हैं? चाहते तो साता बहुत हैं, लेकिन जब तक पल्ले में नहीं होगा, भैया बैंक में चले जावे और कहवे कि लाख रुपया दे दो हमें, वो कह के जमा कितने हैं तुम्हारे बताओ, जमा तो ये तो ढीला नहीं है हमारे, तो कहां से दे देने का, बैंक की गो खुली के चाहे जितने जुआ ले जाओ, तो कहते घर किसको देती आप, कहते जो ने 2 लाख जमा करे हो तो 1,99,000 तक दे सकत, पूरे ले हो तो चुकता हो जाए हिसाब फिर न दे, और अगर बनाए रखने हैं तो थोड़ा ले लो, उतना मिल सकता है, जितना आपने डिपॉजिट किया है उसका भी एक निश्चित गणित है, उतना ही मिलेगा उसमें से, और आप अगर उससे अधिक चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। हम लोग चाहते बहुत अधिक हैं, डिपॉजिट हमारा बहुत कम है, हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि दिन भर में हम कैसे परिणाम करके और कैसे कर्म बांध लेते हैं, और असाता कैसे बनती है, दुख शोक तापा क्रंदन बद परिणेम नान्यात्म परोहय स्थानान्य असत वेद्य, ये सब असाता के दुख, सुख से दुखी सारा संसार है, और तीर्थंकर आ जावे तो इनको सुखी नहीं कर सकत, जो दूसरे के सुख से दुखी है उनको, उनके दुखों तीर्थंकर दूर नहीं कर सकत। अपने दुख से दुखी होते तो हम उपाय बता सकते कि भैया जो उपाय है तो कर ले, दूसरे के दुख से दुखी है तो हम तो सिंहासन पे बिठार के रोज आरती उतारते उनके कि आप दूसरे के दुख से दुखी हैं, ऐसे तो लोग विरले ही हैं, सिंहासन पर बैठते हैं वे, लेकिन ऐसे लोग भी देखने में नहीं आते, देखने में जो आते हैं वे दूसरे के सुख से दुखी हैं, वे अपना दुख बढ़ा लेते दूसरे का सुख देख करके और अपने दुख का इंतजाम कर लेते हैं, देखने में आता है। अपन ऐसे परिणाम खुद अपने रखते हैं, इस तरह के परिणाम विचार करना चाहिए कि ये दुख और अधिक हम संचित कर रहे हैं, स्वयं दुखी हो करके शोक करना, आक्रंदन करना, संताप करना, जोर जोर से जो है मरण के उपरांत गुणगान करते हुए रोते हैं, जिंदगी भर कहो पानी ने प्याओ हो, हाँ, और उसके बाद हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, जबकि हम स्वयं अपने दुख का इंतजाम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए असाता वेदनी ने बांधने होवे तो दुख का अवसर आने पर भी शांत भाव से उसको सहन कर लेना, दुख तो झेले झेले ही कटता है, दुख में दुखी हो जाने से दुख नहीं कटता और अधिक बढ़ जाता है। दूसरा कोई दुखी होवे तो उसके दुख को कमती करने का उपाय करना, उसके दुख को बढ़ाना नहीं, तो हमारे भी साता बंधेगी, हमारे भी असाता कम हो जाएगी, उसकी तो असाता कम होगी उसके अपने परिणामों से। और फिर जरा सा विचार करें इसको ऐसे भी विचार करना कि अगर अपन को साता मिली है तो अपन ने जो सब पहले करो हुई है जब मिली जाती साता, ये भी विचार करते जाना। आगे के लिए साता का इंतजाम तो करें, लेकिन वर्तमान में अगर साता का उदय आ जावे तो फौरन याद आ जावे कि अरे ये मैंने कोई पहले बहुत अच्छा इस तरह किया होगा, जब है मुझे मेरा काम साता से चल रहा। और असाता आ जावे अगर तो विचार करना कि मैंने कोई ऐसा दुख का उपाय पहले करा होगा, अब क्या करूं, अब इसको समता पूर्वक भोगूं। चार आयु के बारे में बहुत स्पष्ट है, आचार्यों ने चारों आयु बंध के कारण लिखे हुए हैं। बहुआरम परिग्रहत्म नारकस्य आयुष, अल्पारम परिग्रहत्म मानुषस्य और माया तैरग्यो नश्य। अगर कोई तिर्यंच बाहर दिखाई पड़े तो क्या विचार करना चाहिए, मैं भी अगर मायाचारी करूंगा तो ऐसे ही स्थिति मेरी होगी। जब जब मायाचारी करने का मन हो तब तब किसी पशु की तरफ ध्यान चला जाए कि ये जो है ये मायाचारी की वजह से ये पर्याय मिलती है। और जब जब जो है शांत भाव से बैठो और अपने मनुष्य होने का गौरव करना हो तो विचार करना कि मैंने पहले संतोष पूर्वक जीवन जिया होगा सो है मनुष्य हुआ हूं, क्योंकि जो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह में संतुष्ट होता है वही मनुष्य बनता है। और सामने अपने घर के दरवाजे के एक बोर्ड लगा लेना चाहिए कि मैं बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करूंगा तो नरक जाऊंगा, ये घर के सामने लगा देना। जब शाम को दुकान से बड़े मुस्कुराते हुए पोटली बाजू में पैसों की लेके आओ और सामने पढ़ा लिखा हुआ मिले के बहुत आरंभ बहुत परिग्रह करने से नरक जाऊंगा, तो कम से कम थोड़े मन में स्ट्राइक तो करे ये बात की क्या कर रहा हूं, इसमें प्रसन्न हूं मैं चार पैसे बढ़ जाने में, चार पैसे देने में प्रसन्नता होना चाहिए कि चार पैसे बढ़ जाने में प्रसन्नता होना चाहिए, जरा विचार कर लो। हाँ बस इतना ही, कर्म सिद्धांत को ऐसे समझने की कोशिश करें अपन अपने जीवन में घटित करके। तत्वार सूत्र जी के सूत्र तो अपन पढ़ते हैं जब पर्यूषण आते हैं बांच ले अपन दस ही अध्याय और एक उपवास को फल मिल गया अपन, और अगर उनको बांचने के साथ साथ जीवन में उतार ले तो एक उपवास का फल क्या संसार में पार होने का रास्ता मिल जाए। और फिर जरा विचार करना कि दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी जो कि मेरे जीवन को विकृत बनाते हैं मैं उनको बांधता कैसे हूं। केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, केवली भगवान का वर्णवाद करना उन पर मिथ्या दोष लगाना, केवली और उसके बाद शुद्ध जो आगम है उसमें अपनी तरफ से कुछ भी मिला देना, उसका अन्यथा प्ररूपण करना। आगम में तो जो है व्रत नियम संयम करने का कोई विशेष नहीं लिखा है, जब सम्यक दर्शन हो जाए तब व्रत नियम की चर्चा है और कछु चर्चा नहीं है, ऐसा प्ररूपण करना यह अवर्णवाद है, ये एकांत है। एकांतवाद दूषित समस्त विषयाधिक पोषक अप्रशस्त, ध्यान रखें इसको कि मैं श्रुत का वर्णवाद तो नहीं कर रहा हूं, श्रुत हमेशा दोनों पक्षों की चर्चा करता है, व्यवहार को झूठा और निश्चय सो साचा ऐसा कथन कहीं भी आगम में नहीं है। ऐसा कथन अगर करते हैं तो हम आगम का वर्णवाद करते हैं, सुनते हैं तो भी हम उसका समर्थन करके उसका वर्णवाद करते हैं। हम क्या करेंगे, हम दर्शन मोहनी बांधेंगे, मिथ्यात्व का बंध करेंगे हम, ये विचार आना चाहिए अपने मन के भीतर। और मैं अगर ये कहूं कि व्रत नियम संयम लेने से कुछ नहीं होता, इसका मतलब है कि विषय कषाय से होता है क्या, तो विषय कषाय का पोषण कर रहा हूं मैं इनडायरेक्ट, लोगों को व्रत नियम इत्यादि से वंचित रख रहा हूं तो मैं विषय कषाय का पोषण कर रहा हूं, इससे जो है मेरे मिथ्यात्व बनने वाला है, जरा विचार करना मोटा मोटा हिसाब। हां बहुत प्रकार से लोग प्ररूपना करते हैं लेकिन वे भूल जाते हैं कि अपने मिथ्यात्व का इंतजाम कर रहे हैं, अपने आस से कर रहे हैं। नहीं भैया, व्रत नियम संयम से संसार में कोई नहीं भटकता, व्रत नियम संयम तो ले लेना चाहिए, मिथ्या दृष्टि भी व्रत नियम संयम ले ले वे तो स्वर्ग चला जाता, नरक से बच जाता है। और जितना भी है आहार दान इत्यादि भोग भूमि कौन कौन होती, सम्यक दृष्टि को नहीं होती, ध्यान रखना। कल ही चर्चा चल रही थी, सम्यक दृष्टि आहार दान देगा तो स्वर्ग जाएगा, काय को भोग भूमि जाएगा। मिथ्यात्व के साथ जिसने मनुष्य आयु बांधी है, बाद में जो है आहार दान इत्यादि दिया है तो फिर भोग भूमि जाएगा। जरा सिद्धांत पढ़ो, जरा विचार तो करो कि क्या प्रक्रिया है। ऐसी सब बातें केवली शुद्ध संग चतुर्विध संग की निंदा करना, निंदा में रस लेना, करने बैठे थे सास की गद्दी पर स्वाध्याय और थोड़ी देर तो चली तत्व की चर्चा और उसके बाद हो गया निंदा पुराण शुरू। नहीं भैया, नहीं सुनना अपन को, ये कान इसके लिए नहीं मिले। तो जहां निंदा होने लगे किसकी, चतुर्विध संघ की अगर कोई भी निंदा होती हो वहां से उठ जाना, उसे शास्त्र नहीं मानना, उसे स्वाध्याय नहीं मानना, क्योंकि वो तो मेरे मिथ्यात्व का बंध करेगा। तो जहां सच्चे देवगुरु शास्त्र की या चतुर्विध संघ की निंदा होती है उसको कानों से नहीं सुनना, और उसको कोई करे तो समर्थन नहीं करना। ये दर्शन मोहनी बंधता, केवली शुद्ध संग धर्म। अरे धर्म में तो हिंसा का प्ररूपण भी किया हुआ है, ऐसा अगर कोई कहे तो उसका समर्थन नहीं करना। वीतरागता का और अहिंसा का ही धर्म में उपदेश दिया है। धर्म को पालन करने वाले जब इतने समझ इतने दुखी दिखाई पड़ते हैं तो आगे क्या उनको सुख मिलेगा, ऐसा कहने वाला कह सकता है? कहते इससे मिथ्यात्व का बंध होगा। क्यों दिखाई पड़ता है? धर्म करने वाला धर्मात्मा रोग शोक से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि वे अपने कर्मों को काटने में लगा हुआ है। उपाय तो कम करता है वो, कर्मों की निर्जरा ज्यादा करवाता है, तो दुखी मालूम पड़ सकता। उसके असाता का उदय आने पर, सामान्य व्यक्ति के असाता का उदय आने पर, सिर दर्द होने पर एक ठो पिल्स खा करके चाय पी लेता है, उपशम करा दिया उसने बाहर से, इसलिए लगता है कि प्रसन्न है। लेकिन साधक के जीवन में असाता का उदय आवे तो 24 घंटे उसको झेलता है, दिखाई पड़ता है दुखी, लेकिन इंतजाम कर रहा है सुख का, ध्यान रखना। और शावक जो है इंतजाम करता है सुख का, लगता है बाहर से कि सुखी है, इंतजाम दुख का कर रहा है। इसलिए धर्म के बारे में बहुत स्पष्ट रखना, केवली शुद्ध संग धर्म। देवावरणवादु, देव लोग तो मांसाहारी होते हैं, सुरापान करते हैं, ऐसा कहीं अगर कोई कहे तो उसको सच मत मानना, उसका समर्थन नहीं करना, नहीं तो मिथ्यात्व बंधेगा, देखिएगा। और कषायोदया तीव्र नामास चारित्र मोहस्त, कषाय का थोड़ा सा उदय आया और अपने आप से अपन ने और ज्यादा कषाय कर ली तो इससे चारित्र मोहनी कर्म ही बंधेगा। दूसरा कोई कषाय कर रहा है तो उसकी कषाय को और बढ़ा दिया हमने, तब भी ध्यान रखना कि हमने अपने लिए कर्म बांध लिया। हाँ, कषायोदयात, कषाय के उदय में तीव्र परिणामात, अकेले कषायोदयात नहीं, कषाय के उदय से कषाय बंधे जरूरी नहीं, कषाय के उदय में जो तीव्र परिणाम मैं कर लेता हूं उससे मुझे और अधिक कषाय का बंध होता, चारित्र मोहनी का बंध होता। ऐसा विचार करना, देखो कितने कर्म हो गए, आयु कर्म की चर्चा हो गई, वेदनी कर्म की, मोहनी कर्म की, ज्ञानावरण दर्शनावरण की चर्चा हो गई, नाम कर्म और गोत्र कर्म के बारे में भी थोड़ा सा विचार कर लें, और बस इतना ही पर्याप्त है। आयु के बारे में थोड़ी चर्चा और है कि देव आयु कैसे बंधती है, और मनुष्य आयु के लिए भी एक सूत्र अलग से दिया है कि अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, संतोषी जीव होगा तो मनुष्य बनेगा, इतना ही नहीं अगर स्वभाव से उसकी मृदुता है, कोमलता है, परिणामों में सरलता है तो कहते मनुष्य बनेगा। अपन विचार तो करो कि मनुष्य बने हैं कैसे, अपने सरल परिणाम रहे होंगे, कैसे अपन सब जीवों के प्रति मृदुता रखते होंगे तब बने हैं, और आज अपन कितने कठोर हो जाते हैं, प्राणी मात्र के प्रति दया नहीं रखते हैं, तो आगे क्या स्थिति होगी हमारी, ऐसा विचार करना चाहिए। इन सब बातों का, आगे के बंध का और वर्तमान में जो पाया है उसका भी विचार करना। और फिर कहते हैं सराग संयम संयमा संयमा काम निद्रा बाल तपांसी दैवस्य, इन सब के द्वारा जो है देवायु का बंध होता है। सराग संयम से भी देवायु का बंध होता है और संयमा संयम पांचवा गुण स्थान देश व्रति है, देवायु का बंध करेगा। ये तो ध्यान रखना कि जिसने व्रत ले लिए हैं वो व्यक्ति देवायु के अलावा और किसी आयु का बंध नहीं करेगा, ये डिक्लेयर्ड है। हाँ, अगर व्रत के परिणाम हैं, सम्यक दर्शन के साथ व्रत की चर्चा है, सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा के साथ अगर व्रत लिए हैं चरणानी योग की पद्धति से, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा पूर्वक हमने अपने आत्म कल्याण और कर्मों की निद्रा के लिए अगर व्रत लिए हैं तो वो व्रत सिर्फ देव आयु का बंध करने में सक्षम है। खोटी आयु नहीं बंधेगी, न मनुष्य आयु बंधेगी, न तिरंच आयु बंधेगी और न नरक आयु बंधेगी। और जिस व्यक्ति के व्रत नियम संयम लेने के भाव ने होवे तो समझना के तो खोटी आयु बांध लिए के बांधने का उपक्रम है, ये भी ध्यान रखना। व्रत नियम संयम लेने के भाव अपने न होवे तो तुरंत जो है पीड़ित हो जाना अपने भीतर, करे ये मेरा कैसा परिणाम, मेरे कौन से कर्म का उदय आ गया कि मेरे व्रत नियम संयम लेने के भाव नहीं हो रहा, इसका मतलब ऐसा तो नहीं मैंने खोटी आयु बांध ली। संभल जाओ, आगे अगर बंधना है तो रुक जाए, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। और क्या कहते हैं, अकाम निर्जरा बाल तप, इससे भी देवायु बंध जाती। बाल तप मतलब मिथ्यात्व के साथ तपस्या करने वाला भी देवायु बांध लेता है, सम्यक दर्शन के साथ बांधता है, सो तो वैमानिक देवों की बांधता है। आगे कहते सम्यक तम चा, अगर सम्यक दर्शन के साथ हुए तब तो फिर क्या कहना, वैमानिक देवों की आयु मिलती है, लेकिन भवनवासी व्यंतर जोशी इत्यादि देव इस तरह इस आयु को बंध, चारों प्रकार की आयु सामान रूप से बनती है लेकिन विशेष रूप से बांधने के लिए अगर वैमानिक देव की आयु है तो सम्यक त्वचा, इसलिए एक सूत्र अलग से रखा। और सम्यक के मायने क्या है, सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, सात तत्वों का श्रद्धान, आपा पर का भेद विज्ञान, आत्मा की तरफ रुचि, यही तो है। सो अपन ये सब बातें समझ चुके हैं कि हाँ ये सब हमारे भीतर अब होने लगी है, आत्मा की चर्चा में रुचि आने लगी है, पर पदार्थों को मैं पर मानने लगा हूं और उनको हे जान करके छोड़ने का उपक्रम करने लगा हूं मैं, अब जोड़ जोड़ के रखने का नहीं करता हूं। और सात तत्वों का अभ्यास करने की रुचि और सच्चे देवगुरु शास्त्र एक दिन भी नांगा न हो जावे कि आज मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए, ऐसा न हो जावे, मुझे तो रोज भगवान के दर्शन करना है, ऐसा मेरा नियम हो गया। सच्ची श्रद्धा तो वही कहलाएगी जिसके प्रति श्रद्धा है उसको देखे बिना और दिन गुजार दो। अरे वाह, ऐसा होता है क्या, हमारा अपना प्रियजन हो और एक मिनट को आंख से दूर हो जावे तो वो एक मिनट निकालना मुश्किल होता है, और जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है उसके दिन भर में एक बार दर्शन करने भी नहीं जाएंगे, कहां करने रोज रोज, कल ही तो करे थे भगवान के दर्शन, कल ही तो मंदिर गए थे, हम तो हफ्ता में एक बार जाते हैं, कहीं सुविधा ही नहीं है मंदिर की, बहुत दूर है, नहीं ये नहीं चलेगा। सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा ऐसी है जो कि हमें एक क्षण भी, आज तो हमने शास्त्र की चाल लाइन ही नहीं बांच पाई, आज तो महाराज जी के दर्शन ही नहीं हो पाए, ऐसी तड़प भीतर में होनी चाहिए, तब कहलाएगी कि हाँ मेरी सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा है और मैं देवायु के बंध के लिए उपाय कर रहा हूं। और अगर बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने में ही आनंद आ रहा हो, इन सब के लिए वक्त न मिलता हो, तो दुकान ही पर लिख के रख लो कि नरक जावे को इंतजाम है पूरो, बिल्कुल कैसे मन ही नहीं हो, बिल्कुल ने मंदिर जावे को ने पूजा करवे को, कई जने इतने बैठी हुई है जो ने कहो भगवान को छियो ने हो अभिषेक ने करो, बताओ इनको अभिषेक करवे नहीं मिला तो हमसे वीर वीर कह के काय महाराज काय नहीं कर सकत, और जो उनको मिले उनसे तो पूछो कि करो हो, एक आध बार इतने बड़े हो गए, हम तो समझ जाते, जब हमें पहुंचते तो हम समझ जाते कि इन्हें अभिषेक नहीं करो, ये सहते हैं पहुंचते कैसे बने, महाराज को पहुंच तो नहीं बन रहा, कैसे भगवान को कब पहुंचो, हो प्रक्षाल करो हो तो पहुंच तो बने। भैया ये सब चीजें जो है बहुत समझने की हैं, हम आपसे बाई फोर्स तो कुछ नहीं कह सकते, हम तो सिर्फ बता सकते हैं जैसा आगम में लिखा है। अपन को उसका ज्ञान हो जाने पर संभव है कि अपनी दृष्टि बदले, और दृष्टि बदल जावे तो फिर तो आनंद ही आनंद है। थोड़ी सी मन में बस ये बात लग जावे कि अरे मैं क्या कर रहा हूं, इतने दिन से सोया हुआ हूं, जिस क्षण भी जाग जाए, बिल्कुल फिर जिस क्षण जाग जाओ तो पीछे मुड़ के नहीं देखना कि काका हम कर चुके, भूल जाओ सब, अब आगे जो कुछ शेष रहा जीवन, साल भर भी शेष रही है, 90 साल के हो गए और फिर भी आंख खुल गई तो 90 साल में चले आओ दौड़ करके, भगवान को अभिषेक नहीं कर पाओ तो कम से कम देख तो लेंगे अभिषेक। ये हमारी अपनी कर्म को, अच्छे कर्मों को बांधने की, अच्छा जीवन बनाने की प्रक्रिया है। और आखिरी बात आपसे क्या कहूं, जो अपन नाम कर्म बांधते हैं वो कैसे बनता है, योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामना तद विपरीतस्य शुभस्य। अपन को अच्छा शरीर मिला है तो उसका अभिमान नहीं करना चाहिए, बल्कि विचार करना चाहिए कि मैंने मन वचन काय की निर्मलता रखी होगी, तब मुझे ये जो मिला है शरीर सुंदर सुडोल मिला हुआ। और जिनके पास ऐसा सुडोल शरीर नहीं है वे ध्यान देवें कि मैंने मन वचन काय का टेढ़ापन मेरे अंदर होगा, मन में कछु वचन में कछु और शरीर से कछु करो हुई है, इससे मेरा ये ऐसा खराब शरीर मुझे प्राप्त हुआ। वो विसंवाद किया होगा, मैंने तेरे मेरे तू तू मैंने बहुत की होगी इसलिए मुझे खराब शरीर मिला। देखो आप, हाँ ये सब विचार आना चाहिए, किसी का सुंदर शरीर देख करके विचार आना चाहिए कि देखो इसने जो है पहले अपने मन वचन काय की ऋजुता रखी होगी, सरलता रखी होगी, इसलिए देखो इसको इतना अच्छा मिला, मुझे भी जो है ऐसा ही मन वचन काय की निर्मलता रखनी चाहिए, तब जाकर के मैं, अरे भैया बांधो तो खोटे काय बांधो, अच्छे काय ने बांधो, को कौन व्यक्ति होगा जो जानबूझ के खोटे बांधेगा, अज्ञानता पूर्वक बांध ले सो बांध ले बे भूल जाओ, अब तो अपन को मालूम पड़ गई, अब तो अपन ऐसा न करो जिससे कि खोटे कर्म बंधे। और कहते हैं नीच गोत्र, इसकी तो बहुत चर्चा है, इस पे बड़ा विचार कर लेना चाहिए, दो मिनट में पूरी बात कहूं। परात्म निंदा प्रशंसे सत्सद गुणोच्छादनोद्भावे च नीचैर गोत्र, नीच गोत्र बांधने होवे तो बहुत आसानी है, आज तो अधिकांश लोग यही करते हैं, अपनी प्रशंसा दूसरे की निंदा, परात्म निंदा प्रशंसे, अपने आप की प्रशंसा करना कि हमने ऐसा करा हमने ऐसा करा हमारी वजह से ऐसा हो गया, और उनने उनने तो सब मिटा दो तो वो तो जाकर हम आ गए मंदिर में, नहीं तो हमने इतने समारोह तो सब मिट गए हो तो मंदिर तक की चीज, अपने घर गृहस्थी तो छोड़ो, समाज तक को पूरे देश को जैसे जेई बना रहे हों, ऐसा भाव आ जाता है अपनी आत्म प्रशंसा का और दूसरे की निंदा का, तो उससे क्या होता, नीच गोत्र बनता है, और नीच गोत्र दूसरे गुण स्थान तक बनता, ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि को बनता है। सो जब जब दूसरे की निंदा करने की, मुनि महाराज की तो ठीक ही है, सो तो साथ में नरक जाने ही है, वो में तो कछु फेरफार है ही नहीं है। हाँ सामान्य की निंदा करेंगे तब भी क्या होने वाला, ये तो जरा विचार करो, किसी सामान्य जीव की भी मैं अगर निंदा का भाव लाऊंगा, मुंह से निंदा करूंगा, तो मैं अपने सम्यक दर्शन का घात करके पहले मिथ्यात्म में आऊंगा और फिर नीच गोत्र का बंद करूंगा। सिद्धांत इसलिए कहते कि पढ़ना चाहिए, करणानि योग का अभ्यासी होगा तो सावधान होगा। बस अब बताइए, ये चर्चा अपन ने कभी की इस तरह की बैठ करके, अपन ऐसी चर्चा कर रहे हैं आज, सूत्र जी का सूत्र रोज पढ़ते हैं, जब जब भी निंदा का भाव मन में किसी दूसरे की आवे फौरन अपने कान पकड़ लेना कि क्या कर रहे, दूसरे के नहीं भैया अपने ही, कि जी क्या कर रहे, अपने उपाय कर रहे, नीच गोत्र का सम्यक दर्शन अब भाई छूट हो जाए तो नीच गोत्र बंधेगा पहले दूसरे गुण स्थान में, सम्यक दर्शन के साथ नहीं, सम्यक दर्शन के साथ उच्च गोत्र बनता है। तो भैया दूसरे के उसमें लिखा है कि सदसद गुणो छाद गुणो, जो दोष उसमें नहीं है उन दोषों को कहना और जो दोष उसमें है उनको भी कहना। देखो तो वो कह रहे हैं कि जो दोष उसमें है उनको भी नहीं कहना और जो नहीं है उनको तो कहना ही नहीं, और अपन तो जो दोष नहीं हो तो उन तक को कहते हैं, अपनी क्या स्थिति बनेगी। जो दोष है वे कह रहे हैं कि उनको भी न कहना, जो दोष है उनकी भी निंदा न करना, रहन दो उन्हें, वो अपना गलत जा रहा हो तुम काहे को अपने परेशान हो रहे, जी हलकान करें, दूसरे के दोष देख देख के बेहुए दोषी तो भी अपनी जाने, अपन को का करने। लेकिन ऐसा भाव नहीं आता, उल्टा ही भाव आता है भैया। अच्छा सीधा भाव आवे तो उच्च गोत्र बंधेगा, और ऐसा निंदा का भाव आवे तो नीच गोत्र बंधेगा। बस अब मेरे ख्याल से पर्याप्त है अंतराय कर्म की चर्चा, और बाकी बची है देखते हैं कितना और संयोग है और उसके अपन समझेंगे इन सब चीजों को। और आखिरी में मैं आपसे एक बात और कहूं, शायद कोई उदाहरण मेरे ध्यान में आ जावे तो आपको सुनाए देता हूं। चेतना को हमें इतना अच्छा है, चेतना को हमें ऐसा ज्ञान पूर्वक संस्कारित करना चाहिए जिससे कि हमसे बुरा हो ही ना पाए और हम हमेशा जो है अच्छा करते रहें अपने जीवन से। एक स्थिति ये होती है कि हम अच्छा करना चाहते और हमसे बुरा हो जाता, नरक में तो यही स्थिति है। आचार्य महाराज हमेशा उदाहरण देते हैं कि नाय की जीव अवधि ज्ञान से जान करके सोचता है, कह रही ये तो मेरी माँ का जीव है, इसने मेरे ऊपर कितने उपकार किए हैं, लेकिन अगले क्षण जो है तुरंत जैसे ही सोचता है कि मैं पास जाकर गले लगा लूं, पैर छू लूं, और अशुभ भाव तुरंत आ जाता है। क्या भाव आ जाता, कह रही ये तो वही है जो कि जब मैं छोटा सा था तो हाथ में कुछ काला काला लगा के मेरी आंख फोड़ना चाहती थी, अब देखता हूं, अभी देखता हूं। हां फौरन उसका जो अवधि ज्ञान है, कुअवधि है, सुअवधि तो है नहीं, कुअवधि ज्ञान के माध्यम से और विपरीत